नमस्कार भारत, 3 जनवरी मंगलवार। सपा की साइकिल की अब कौन करेगा सवारी? मुलायम के बाद अब अखिलेश गुट के रामगोपाल मिलेंगे चुनाव आयोग से।
रामगोपाल यादव जी नंदा जी जाएंगे और हम लोग वहाँ पे इलेक्शन कमीशन के सामने सारी चीज रखेंगे। 90% से ऊपर सभी लोग हम लोगों के साथ हैं, तो ये सिंबल हमारा होना चाहिए।
अखिलेश गुट का अगला कदम अब क्या होगा, सुनेंगे एक बातचीत पार्टी नेता नरेश अग्रवाल से। और केरल में धर्मांतरण बन रहा है बड़ा मुद्दा, लेकिन सच कहाँ है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रहमदयालुमयुम करुणामयद अल्लाहुविन नामतिनि अर्रहमानिर्रहीम अर्रहमानिर्रहीम।
होगी अखबारों की समीक्षा और खबरें खेल की भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार प्रभात पांडे से। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में चल रही खींचतान के बीच आज मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव का खेमा चुनाव आयोग से मिलेगा। कल उनके पिता मुलायम सिंह यादव, अमर सिंह और जयप्रदा के साथ मिलकर पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर दावा जताने चुनाव आयोग पहुंचे थे। रविवार को लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में अखिलेश यादव को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया था, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने इस अधिवेशन को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। सीरिया के कई विद्रोही गुटों ने कहा है कि उन्होंने सीरियाई सेना के साथ प्रस्तावित शांति समझौते पर विचार करना फिलहाल छोड़ दिया है। रूस और तुर्की की पहल पर कजाकिस्तान में इसी महीने शांति वार्ता प्रस्तावित है। विद्रोही गुटों का कहना है कि मौजूदा 4 दिनों का युद्धविराम लागू होने के बावजूद राष्ट्रपति बशर अल असद की सेनाएं लगातार गोलीबारी कर रही हैं। एक बयान जारी कर इन गुटों ने कहा कि जहां वो इस युद्ध विराम का पालन कर रहे हैं, तो सीरियाई सेना इसका घोर उल्लंघन कर रही है। ब्राजील के अमेजोनास राज्य में एक जेल में कैदियों के 2 गुटों के बीच हुए दंगे में 50 लोग मारे गए हैं। दंगों के बाद पुलिस जेल की जोर शोर से तलाशी ले रही है। अधिकारियों ने घटना की जानकारी देते हुए कहा कि रविवार की रात मेनोस शहर के बाहर स्थित इस जेल में शुरू हुआ दंगा कई घंटों तक चला। कैदियों ने बाद में बंधक बनाए गए 12 गार्डों को छोड़ दिया और अपने हथियार सौंप दिए। बताया जाता है कि जेल में कैदियों की संख्या क्षमता से बहुत ज़्यादा है। अधिकारियों के मुताबिक तस्करी में शामिल ब्राज़ील के 2 सबसे बड़े गैंग के कई लोग इस जेल में बंद हैं। अमेजोनास के सुरक्षा प्रमुख सर्जियो फोंटिस ने कहा कि दंगों की तैयारी बहुत पहले से चल रही थी। उन्होंने कहा, जांच से साफ पता चला है कि योजना बहुत पहले से बन चुकी थी। कैदियों ने जेल प्रशासन को भरोसा दिलाया था कि वो अच्छा बर्ताव करेंगे और किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने अपना वादा नहीं निभाया। हालांकि ये बात भी सच है कि आप अपराधियों पर भला कैसे भरोसा कर सकते हैं। ये थे ब्राज़ील के अमेजोनास राज्य के सुरक्षा प्रमुख सर्जियो फोंटिस के शब्द। भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से पुलिस ने कई घंटों तक पूछताछ की। नेतन्याहू और उनकी पत्नी पर अमीर व्यापारियों से रिश्वत लेने और सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग करने का आरोप है। नेतन्याहू ने सभी आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि जाँच से सही बात सामने आ जाएगी। उन्होंने कहा, हमें पता है कि कई टीवी स्टूडियो में और विपक्षी पार्टियों में जश्न का माहौल है, लेकिन मैं उन सबको कहना चाहूंगा कि खुशी मनाने में जल्दबाजी ना करें, जरा ठहर जाएं, क्योंकि जांच से कुछ निकलने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ गलत ही नहीं किया। ये लोग बस गुब्बारे छोड़ते चले जाएंगे और मैं इसराइल का नेतृत्व तो आगे भी करता रहूंगा। ये थे इसराइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के शब्द, जो भ्रष्टाचार के आरोपों को नकार रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने कहा है कि इराक में इस्लामिक स्टेट के कब्जे से मोसुल शहर को गर्मियों तक छुड़ा लिया जाएगा। ओलांद इराक में तैनात फ्रांस की सेनाओं का निरीक्षण करने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। इस बीच इराक की राजधानी बगदाद में हुए कार बम धमाके में 35 लोगों की मौत हो गई है और 61 घायल हो गए हैं। धमाका एक व्यस्त चौराहे में हुआ जो शिया बहुल इलाका है। इसके बाद एक अस्पताल की कार पार्किंग में भी धमाका हुआ जिसमें 3 और लोगों की मौत हो गई। इस्लामिक स्टेट ने दोनों धमाकों की जिम्मेदारी ली है। इससे पहले बगदाद में ही हुए 2 आत्मघाती हमलों में शनिवार को 28 लोगों की मौत हो गई थी। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत, फैसल महमद अली से। रेडियो के साथ साथ आप सुन सकते हैं इसे हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर भी लाइव। उत्तर प्रदेश की सत्ताधारी समाजवादी पार्टी में जारी तकरार नित नए मोड़ ले रही है। अब जो मूल सवाल उठ रहा है वो ये कि पार्टी का चुनाव चिन्ह यानी साइकिल पर किसका हक होगा, मुलायम का या अखिलेश धड़े का। मुलायम सिंह कल यानी सोमवार को शिवपाल और अमर सिंह के साथ चुनाव आयोग गए। आज अखिलेश धड़े की तरफ से राम गोपाल यादव आयोग से मिलेंगे। एक रिपोर्ट के साथ वात्सल्य राय।
उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में साइकिल चलेगी या नहीं, ये सवाल अचानक अहम हो गया है। इस सवाल की अहमियत सिर्फ समाजवादी पार्टी के दोबारा प्रदेश की सत्ता में आने को लेकर नहीं है, बल्कि असल पेच ये है कि इस चुनाव चिन्ह के साथ चुनाव के मैदान में उतरेगा कौन। लखनऊ में रविवार को समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अखिलेश यादव की ताजपोशी का ऐलान करने वाले राम गोपाल यादव आज चुनाव आयोग के सामने जाएंगे और साइकिल चुनाव चिन्ह पर दावा करेंगे। वहीं रविवार के अधिवेशन को असंवैधानिक बताने वाले मुलायम सिंह यादव कल चुनाव आयोग पहुंचकर साइकिल पर अपना दावा पहले ही जता चुके हैं। उनका साथ देने के लिए राज्यसभा सांसद अमर सिंह भी मौजूद थे, जो कल ही लंदन से लौटे थे। अमर सिंह को रविवार के अधिवेशन में पार्टी से बाहर करने का ऐलान किया गया था। हालांकि अमर सिंह इस कार्रवाई को ज्यादा अहमियत नहीं दे रहे हैं।
मुलायम सिंह जी ने कहा, अमर सिंह हमारे दल में नहीं है, हमारे दिल में है। तो अगर मुलायम सिंह जी अपने दिल से मुझे निष्कासित कर दें तो मेरे लिए खेद का विषय है। हम मुलायम सिंह जी के साथ थे, हैं, रहेंगे और उनके साथ रह करके अगर कभी नायक बने तो अगर खलनायक भी बनना पड़ेगा तो बनने के लिए तैयार।
समाजवादी पार्टी में जारी घमासान क्या रुख लेगा ये अभी तय नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसे लेकर तीखा हमला बोल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल इस तकरार का जिक्र करते हुए कहा,
तीसरा दल है जो पूरी ताकत परिवार का क्या होगा उसमें लगे हुए हैं। एक तरफ पैसे बचाने वाली पार्टी, एक तरफ परिवार में उलझी पार्टी, एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जो उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए आई है।
प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ की रैली में सिर्फ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर निशाना नहीं साधा, उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा,
एक ऐसा दल है जो पिछले 67 साल से इस देश को बांटने पे लगा है, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, फिरके के नाम पे और अब गरीब अमीर के नाम पे।
साल 2012 में उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस चौथे और भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर रही थी। उस वक्त अव्वल नंबर पर रही समाजवादी पार्टी के नेता फिलहाल विरोधियों की चुनौती की काट खोजने के बजाय अपने कुनबे में जारी जंग जीतने की कोशिश में है।
ये थे वात्सल्य राय। मुलायम सिंह यादव ने 5 जनवरी को लखनऊ में जो राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया था उसे टाल दिया गया है। माना जा रहा है कि वह अभी शक्ति संतुलन अपने पक्ष में करने की कोशिश में जुटे हैं। इस बीच अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव का गुट अपनी पक्ष की बढ़त को बनाए रखने की कोशिश में है। हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने इस गुट के एक अहम नेता और राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल से बात की और पूछा कि उनके पक्ष के आगे का कदम क्या होगा।
कल राम गोपाल यादव जी नंदा जी जाएंगे और हम लोग वहाँ पे इलेक्शन कमीशन के सामने सारी स्थिति रखेंगे। 90% से ऊपर सभी लोग हम लोग के साथ हैं, तो ये सिंबल हमारा होना चाहिए क्योंकि पार्टी के जो मेन कार्यकर्ता जिन्होंने पार्टी के नेता को चुना है, अध्यक्ष को चुना है, वही सर्वोपर होते हैं।
आप लोग भी जो बात कर रहे हैं वो मुलायम सिंह यादव को संरक्षक बनाने की बात कर रहे हैं, अपने साथ उनको लेकर चलने की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव पूरे जिस तरह से ये प्रक्रिया चल रही है, अखिलेश जी, रामगोपाल यादव, आप जिस तरफ खड़े हैं वो इस प्रक्रिया को ठीक नहीं मान रहे हैं।
देखिए, हम लोगों ने नेताजी को संरक्षक बनाया है, उनको हम साथ लेके चल रहे हैं, तो हम लोगों को नेताजी को अब भी सर्वोपर अपना माना है, लेकिन कुछ लोग नेताजी को बहकाए हुए है, तो कहते हैं उन चीजों से, उन लोगों से अगर नेताजी छुट्टी पा जाए तो हम सब परिवार एक से हो जाए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लखनऊ में रैली थी, उन्होंने सीधे तौर पर इस झगड़े को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा, तो आपको क्या लगता है कि चुनाव सामने हैं जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के, तो आपकी पार्टी पर इसका कोई असर होता दिखता है आपको?
इससे अखिलेश की पॉपुलरिटी और बढ़ी है। जिस तरह अखिलेश यादव को पार्टी से निकाला गया, 6 साल के लिए निकाला गया, वो जनता के दिमाग में बैठ गया कि अखिलेश के साथ अन्याय हो रहा है और लोगों में और सिंपैथी भी अखिलेश के प्रति हो गई है। तो मैं समझता हूँ इससे कोई नुकसान नहीं होगा, उसके फायदा ही होगा।
लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक ये स्थिति थी कि अखिलेश पर कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि मुलायम सिंह यादव को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है, क्या उससे कोई नुकसान होता हुआ दिखता है आपको?
नहीं, कोई नुकसान होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने नेताजी को संरक्षक बनाया, हम नेताजी को कहाँ इग्नोर कर रहे हैं।
क्या आपको एकजुटता की संभावना दिखती है?
अब राजनीति में असंभव कुछ नहीं होता है।
राज्यसभा सांसद और समाजवादी पार्टी के अहम नेता नरेश अग्रवाल, जो इन दिनों अखिलेश यादव के साथ हैं, जिस दल को मुलायम सिंह ने तिनके करके खड़ा किया था, आज वो उसके हाशिए पर हैं। लखनऊ में जारी इस पूरी राजनीतिक युद्ध पर विनीत खरे की ये खास रिपोर्ट।
मुलायम को लेकर कई सोच है। पहला, ये कैसा बाप है जो लायक बेटे की उन्नति में ही रोड़ा है और राजनीतिक जीवन के उत्तरार्ध में भी सत्ता पर नियंत्रण चाहता है। लखनऊ में हिंदुस्तान टाइम्स अखबार में संपादक सुनीता एरन के मुताबिक पब्लिक परसेप्शन की लड़ाई में अखिलेश आगे हैं।
मुलायम सिंह जी के आसपास जो लोग खड़े हैं, जिनकी वजह से ये सब डिसीजंस हो रहे हैं, जैसे अतीक अहमद, गायत्री प्रजापति या अमर सिंह जी हैं, तो पब्लिक में उन लोगों की बहुत अच्छी छवि नहीं है। जनरली लोग ये मानते हैं कि अखिलेश जी का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा ठीक रहा है, अगर बहुत अच्छा नहीं रहा है तो अच्छा काम किया है। तो क्यों फादर इस समय उन लोगों के साथ खड़े हो गए हैं और बेटे को छोड़ दिया है? अगर वो बुला के समझा लेते और एक इम्पार्शियल रोल प्ले करते और टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में अखिलेश जी को भी इन्वॉल्व कर लेते, तो मुझे लगता है इतना बात आगे नहीं बढ़ती।
सोशल मीडिया यानी वर्चुअल वर्ल्ड में अखिलेश का बोलबाला है, लोग उनके समर्थन में बोल रहे हैं, लेकिन जमीन पर भी क्या यही सच्चाई है? फर्स्ट पोस्ट हिंदी के संपादक अजय सिंह कहते हैं,
वर्चुअल वर्ल्ड में रहने की वजह से उनको जो मीडिया में छवि और छवि दिखाई दे रही है, ये छवि उनका वोट बैंक नहीं है साहब। वो वोट बैंक उनकी छवि से कितना असर होगा ये हमें इलेक्शन में पता चलेगा।
अखिलेश के बारे में आपको सुनने को मिलेगा कि वो विकास की राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी के समर्थकों का दायरा बढ़ाया, लेकिन एक दूसरे वर्ग को लगता है कि अखिलेश की सोच हवा हवाई ज्यादा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश अभी भी जाति और धर्म के आधार पर बंटा हुआ है और मुलायम सिंह यादव जैसे जमीनी नेता को पता है कि सामाजिक ताने बाने को जोड़कर ही राज्य में चुनाव जीता जा सकता है। अजय सिंह कहते हैं,
मुलायम सिंह ने कभी मीडिया की इस बात की परवाह नहीं की कि वो अपराधियों को साथ रखते हैं, वो हमेशा अपराधी साथ रखे हैं और अपराधी ही उनके पार्टी के एक तरह से मेन स्टे होते थे। तो आज के दिन अगर आप उनकी छवि साफ सुथरे नेता और कोई अटल जी और आडवाणी जी जैसा देखना चाहते हैं तो ये दिक्कत आपकी है।
मामला चुनाव आयोग के पास है और मुलायम इस लड़ाई से पीछे नहीं हटते दिखते। पूर्व बीबीसी संवाददाता और वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी,
मुलायम सिंह यादव ने एक्चुअली जिस अखाड़े में पहलवानी सीखी है, तो वहाँ अगर कोई चुनौती देता है तो बिना दो दो हाथ के हार जीत नहीं मानी जाती, क्योंकि अखिलेश यादव और रामगोपाल ने उनको चैलेंज किया है पॉलिटिकली, उनकी अथॉरिटी को। तो इसलिए अब मुलायम सिंह यादव बिना उसको लड़ाई लड़े छोड़ेंगे नहीं।
समाजवादी पार्टी आज दो हिस्सों में खड़ी है। अगर साइकिल चुनाव चिन्ह फ्रीज होता है तो पार्टी को ही नुकसान होगा। उधर रामदत्त त्रिपाठी के मुताबिक ये सब अखिलेश धड़े की जिम्मेदारी है कि वो चुनाव आयोग को अपने पक्ष में राजी करे।
कोई वैकेंसी क्रिएट किए बिना अखिलेश यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। मुलायम सिंह उनको हटाने का कोई अविश्वास प्रस्ताव तो पास नहीं हुआ या कोई उनको हटाने की कार्रवाई हुई नहीं। बिना वैकेंसी क्रिएट किए दूसरे आदमी कैसे पदारूढ़ हो सकता है, ये एक बहुत बड़ा लीगल प्रश्न भी है।
पर्दे के पीछे अखिलेश और मुलायम को साथ लाने की कोशिशें जारी होंगी, लेकिन ये भी साफ है कि अभी भी अखिलेश और मुलायम ने अपने दरवाजे खुले छोड़े हुए हैं। रामदत्त त्रिपाठी के अनुसार अगर मुलायम को खेल बिगाड़ना होता तो वो उनका समर्थन करने वाले विधायकों को राज्यपाल के पास भेज देते और सरकार गिर जाती। उधर अखिलेश चाहते तो गायत्री प्रजापति, जिनको लेकर उन्होंने इतना बड़ा मुद्दा बनाया था, उन्हें मंत्रिमंडल से ही निकाल देते। विनीत खरे, बीबीसी दिल्ली।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 5875, 7430, 9560, 11995 किलो हर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलो हर्ट्ज पर।
सुप्रीम कोर्ट ने कल जारी एक हुक्म में कहा कि चुनाव के दौरान धर्म, नस्ल, जाति और भाषा के आधार पर वोट देने की अपील को भ्रष्ट आचरण माना जाएगा। इस फैसले को लेकर हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह से बात की और सबसे पहले पूछा कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को वो किस रूप में देखती हैं।
जो कानून था वो जस्टिस वर्मा ने 1969 में इंटरप्रेट किया था. उन्होंने कहा था कि एक कैंडिडेट अपनी रिलीजन या कास्ट के बारे में अपने लिए वोट्स की अपील नहीं कर सकता है. लेकिन आज का जो जजमेंट है उसमें ये लिखा हुआ है ना तो सिर्फ कैंडिडेट लेकिन कोई और भी रिलीजन और कास्ट वगैरह के नाम पे अपील नहीं कर सकता है. तो इसका मतलब है कि अगर कोई पार्टी का प्रतिनिधि हो जो किसी कैंडिडेट के लिए जाके स्पीच करता है और कहता है कि धर्म के नाम में वोट दो, वो अब नहीं हो सकेगा.
जिस तरह से भारत में राजनीति होती है, भारतीय राजनीतिक परिदृश्य पर इस आदेश का कितना असर होगा?
मान लो कि कोई पॉलिटिकल पार्टी हिंदुत्व का एजेंडा अपने मैनिफेस्टो में लिख देती है या अपने इलेक्शन स्पीचेस में कैंडिडेट या पार्टी का प्रतिनिधि प्रचार करता है, जैसे कि अगर आप मुझे वोट दोगे तो मैं राम मंदिर बनाऊंगा, ये नामुमकिन है. इसी तरह से अगर मुस्लिम कैंडिडेट भी ऐसी कोई बात कह दे कि हम यहाँ मस्जिद बनाएंगे इस कारण से आप मुझे वोट दो, वो भी नहीं कर पाएंगे.
ये आदेश आ गया है. भारत में केवल आम चुनाव नहीं होता, तमाम तरह के चुनाव होते हैं, हजारों कैंडिडेट हिस्सा लेते हैं. लगातार चुनाव आयोग कैसे मॉनिटर कर पाएगा? क्या चुनाव आयोग की दिक्कत भी इस फैसले के बाद कुछ बढ़ेगी?
जरूर बढ़ेगी, क्यों नहीं बढ़ेगी, क्योंकि सबसे पहले तो चुनाव आयोग को हर पार्टी के मैनिफेस्टो को देखना पड़ेगा. जब मैनिफेस्टो इश्यू होते हैं उन्हीं मैनिफेस्टोज में अपील की जाती है. उसके बाद जब एक कैंडिडेट वो मैनिफेस्टो उठा के कहता है ये मेरा मैनिफेस्टो है और मैं इस मैनिफेस्टो पे आपसे वोट मांग रहा हूँ, तो उस कैंडिडेट को भी डिस्क्वालिफिकेशन करना पड़ेगा. इतना आसान मामला नहीं है, इतनी जल्दी मुझे नहीं लगता है कि कुछ बदलने वाला है. लेकिन हर पार्टी को अब सोचना पड़ेगा कि हम अपना मैनिफेस्टो कैसे ड्राफ्ट करें और हम अपना पॉलिटिकल एजेंडा कैसे बदलें.
और अब ये थी इंद्रा जयसिंह. और अब एक नजर डालते हैं कि अखबार क्या कह रहे हैं. प्रभात पांडे, ये बताइए, समाजवादी पार्टी, कल सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म आया वो, या बीसीसीआई?
जी, ये तीनों ही खबरें आज के लगभग तमाम अखबारों ने पहले पन्ने पे इनको सुर्खियां दी है. और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पार्टियां उम्मीदवार या प्रतिनिधि जाति और धर्म के आधार पर वोट नहीं मांग सकती, ये द इंडियन एक्सप्रेस ने इसे अपनी पहली खबर बनाया है. इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लखनऊ रैली को भी पहले पन्ने पर जगह दी है, जिसमें मोदी ने कहा था कि 14 सालों तक उत्तर प्रदेश में विकास का रथ रुका था और अगर विकास के नाम पर वोट देना है तो बीजेपी को दीजिए, बीजेपी जो है वो राज्य में विकास लाएगी.
और ये सोशल मीडिया पे प्रभात जो एक बड़ी जबरदस्त चीज चल रही है, वो मोदी का सब लोग इस बात पे मजाक उड़ा रहे हैं जिस पे उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने जीवन की अपनी जितनी रैलियां संबोधित की है उसमें ये सबसे बड़ी रैली थी. तो बहुत सारे लोग जो शायद हो सकता है कांग्रेस के समर्थक हो, वो ये कह रहे हैं कि अगर रैली से जो है और जो भाषण में अगर क्राउड होता उससे अगर वोट मिलता तो आज तक जो है वो लेफ्ट पार्टी सबसे बड़ी जो है वो सबसे ज्यादा सरकार बनाती.
जी 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 फैसल. और ट्विटर पर भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ काफी तरह के रिएक्शन आ रहे हैं. द टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले पन्ने पर खबर छापी है कि सिर्फ वो लोग जो 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक विदेश में रहे हैं, सिर्फ वही लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पुराने नोट बदलवा सकते हैं. पहले जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी जिस दिन लागू हुई थी उसकी पूर्व संध्या पर अपने भाषण में कहा था कि आरबीआई के दफ्तरों से 31 मार्च तक जो लोग हैं वो पुराने नोट जमा करा सकते हैं, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसे लोगों को वापस कर दिया और कहा कि सिर्फ इस पीरियड में जो लोग विदेश में रहे सिर्फ वही लोग जो है वो नोट जमा करा सकते हैं. मुझे उम्मीद है कि आपने अपने सारे पुराने नोट जमा करा.
नहीं, मैंने तो जमा करवा दिए, लेकिन मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को, जो कुछ लोग ऐसे हैं जो बीमार करा हैं और किसी दूसरे शहर के रहने वाले हैं और वो इस शहर में आए हुए हैं.
जी,
तो हो सकता है कि फिर वो एक नया हंगामा शुरू होगा कि उनके लिए एक दिक्कत जो है ये.
जी जी, या जिन लोगों ने संयम रखा होगा कि भीड़ कम हो जाए तो यहाँ धैर्य का फल मीठा होता है ऐसा कहा जाता है, लेकिन ये तो उल्टी बात साबित हो रही. इसके अलावा फैसल, द टाइम्स ऑफ इंडिया में कर्नाटक के जो गृह मंत्री हैं जी परमेश्वरा, उनका विवादित बयान, उसे पहले पन्ने पर छापा है. दरअसल बेंगलुरु में नए साल के जश्न के दौरान कई महिलाओं ने छेड़छाड़ की शिकायत की थी कि हमारे साथ छेड़छाड़ की शिकायत हुई, जिस पर कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वरा ने है कि इस तरह की चीजें तो होती रहती हैं. तो उनके इस बयान की काफी आलोचना हो रही कि वो इस तरह की गंभीर घटना पर इतनी
पॉलिटिकली इनकरेक्ट और बहुत ही इनसेंसिटिव बयान बहुत सारे लोग कह रहे हैं.
जी जी. और हिंदुस्तान अखबार में खबर छपी है कि आमिर खान की दंगल फिल्म ने 10 दिनों में 270 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, कमाई के नए रिकॉर्ड बनाती जा रही है और सलमान खान की बजरंगी भाईजान को पीछे छोड़ दिया है। आपने दंगल देखी या नहीं?
मैंने देखी दंगल और काफ़ी तारीफ हो रही है
इस
दंगल
फिल्म की काफ़ी जी
इस फिल्म की काफ़ी तारीफ हो रही है और लोग उसमें जो औरतों के किरदार को जो बढ़ाने की और उसको दिखाया है आमिर खान ने उसकी काफ़ी तारीफ हो रही है। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एक तरह से अपना विल आमिर खान या जो कैरेक्टर था उसने अपने बेटियों पर थोप रहा
है। हाँ, जिसकी आलोचना दैनिक भास्कर में एक खबर छपी है जो कि दूसरे अखबारों ने भी ली है और कल की काफ़ी महत्वपूर्ण खबर थी कि सरकार ने कहा है कि अगर आप होटलों और रेस्तरां में जाते हैं, खाते हैं और वहाँ की सर्विस से संतुष्ट नहीं हैं तो आप सर्विस चार्ज चाहें तो ना दें, जो होटल या रेस्तरां हैं वो आप पर इम्पोज या ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं।
मतलब वो आखिरकार ग्राहकों को ही ये जो है वो तय करना होगा कि वो दें कि ना दें,
दें या ना दें। हाँ।
सरकार ने कहा हम कुछ नहीं करने, आप अपने से
आप निपटिए।
हाँ, जिसको वो आम भाषा में कहते हैं कि आप फरिया लीजिए।
जी जी। और एक और जाते जाते एक छोटी सी हिंदुस्तान टाइम्स में एक दिलचस्प खबर ये छपी है कि जो भारत की डिस्कस थ्रोअर हैं कृष्णा पूनिया, उन्होंने जो है वो राजस्थान के चुरू में दो लड़कियों को सड़क पर कुछ लड़के छेड़ रहे थे तो कृष्णा पूनिया ने उन लड़कियों को बचाया। जाहिर सी बात है कृष्णा पूनिया का डील डॉल देखकर वो लड़के डर गए होंगे।
तो चलिए कुछ तो डर हुआ कहीं किसी बात से।
जी जी। तो फैसल, ये अखबारों में की सुर्खियाँ।
बहुत बहुत शुक्रिया अखबारों की समीक्षा के लिए प्रभात।
बीबीसी हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
और आज की विशेष रिपोर्ट। करीब 6 हफ्ते पहले केरल के मलापुरम जिले में फैसल नाम के एक युवक की हत्या कर दी गई थी। फैसल ने कुछ माह पहले ही इस्लाम धर्म कबूल किया था। वो बीवी के साथ साथ माँ बाप को भी मजहब तब्दील करने के तैयार करवाने की कोशिश में थे। हिंदुवादी संगठनों का कहना है कि हिंदुओं को केरल में धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जा रहा है, लेकिन क्या यह आरोप सच है? बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद ने कालीकट से भेजी इस रिपोर्ट में यही जानने की कोशिश की है।
एक मौलवी एक क्लासरूम में कुरान का पाठ पढ़ा रहा है। क्लासरूम में 10 लोग हैं जिन्होंने हाल में इस्लाम कबूल किया है।
मैं तरबियतुल इस्लाम सभा कालीकट में हूं और यहां पर जो तरबियत दी जाती है ऐसे लोगों को जो मुसलमान होते हैं, कई तरह के क्लासेस होते हैं जहां पर उनको अच्छे मुस्लिम की तरबियत दी जाती है, कैसे अच्छा मुस्लिम बना जाए, समाज में कैसे इंटीग्रेट हुआ जाए, या फिर अगर इस्लाम के बारे में और समझना चाहते हैं तो यही वो जगह है जहाँ पर इस तरह की तालीम दी जाती है, इस तरह का इन्हें दर्स दिया जाता है।
इनमें से कुछ को पढ़ने में दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन रफीक ठीक तरह से अपना पाठ पढ़ पा रहे हैं। बाद में उन्होंने मुझे पढ़कर भी सुनाया।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहमत दयालुमयुम करुणामयद अल्लाह विन नामतिन अर रहमान रहीम फरना।
रफीक 4 साल पहले मुसलमान बने। उनका पुराना नाम महेश था और वो कर्नाटक के रहने वाले हैं।
कारण
रफीक कह रहे हैं कि उन्होंने कुरान और इस्लाम की कई दूसरी किताबें पढ़कर इस्लाम कबूल किया। उनका कहना था कि उन्हें यकीन हो गया कि अल्लाह एक है जिसने हम सबको बनाया, मैंने सच का रास्ता अपनाया। ये थे रफीक के शब्द। रफीक के अनुसार उन्हें किसी ने धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर नहीं किया और न ही उन पर किसी तरह का दबाव था। रफीक कहते हैं कि अब वो अपने माता पिता को इस्लाम धर्म कबूल कराने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जल्द ही उनके माता पिता भी इस्लाम कबूल कर लेंगे। केरल में इस्लाम धर्म में परिवर्तन के लिए 2 रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं। इनमें से एक 100 साल पुरानी है, जबकि तरबियतुल इस्लाम सभा लगभग 80 साल पहले स्थापित हुई थी। सड़क के किनारे दुकानों के बीच थोड़ा अंदर की तरफ एक बड़ा सा गेट है जिसके अंदर जाकर मुलाकाती को अपना नाम रजिस्टर में लिखाना पड़ता है। एक बार अंदर गए तो संस्था के जरिए जारी किए गए स्थायी पहचान पत्र को गले से लटकाना अनिवार्य है। यहाँ एक दिन में औसतन 1 शख्स इस्लाम कबूल करता है। इस समय यहाँ 30 लोग अच्छे मुसलमान बनने की ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। बहुमत महिलाओं की है जिनसे हमें मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। संस्था के प्रबंधक अली कोया आधी सफ़ेद हुई लंबी दाढ़ी के बावजूद ठेठ मौलवी नहीं लगते। वो जब मुस्कुराते हैं तो उनके सामने के टूटे हुए दांतों से उनकी ढलती उम्र का अंदाज़ा होता है। उन्हें देखकर नहीं लगता कि वो धर्म परिवर्तन के दिग्गज हैं।
40 यानी फील्ड
वो कह रहे थे कि मैं पिछले 40 सालों से इस काम में लगा हूं और अब तक हजारों लोगों को कलमा पढ़ा चुका हूं। दरअसल वो अपनी संस्था में कलमा उन्हीं लोगों को पढ़ाते हैं जो इस्लाम में प्रवेश करने का फैसला संस्था में आने से पहले ही कर चुके होते हैं। अली कोया के अनुसार इस संस्था में धर्म परिवर्तन देश के कानून के दायरे में किया जाता है और हर परिवर्तन की रिपोर्ट पुलिस को भेजी जाती है।
അവരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിൻ്റെ എഗ്രിയോട് കൂടി തന്നെ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ എഗ്രിയോട് കൂടി തന്നെ അവരോട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ പ്രൂഫ്
കോയാ കേത്തെ ഹേ ലോഗ് അപ്നി മർജി സേ ഇസ്ലാം ധർമ്മ കബൂൽ കർത്തെ ഹേ ഹം പഹലെ പഹചാൻ പത്ര കി ജാഞ്ച് കർത്തെ ഹേ യേ ദേഖ്തെ ഹേ കി കഹീ ഉൻകാ ക്രിമിനൽ യാ ചരംപന്തി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് തോ നഹീ। पासपोर्ट, आधार कार्ड और स्कूल सर्टिफिकेट जैसे पहचान पत्र को देखकर और उनके परिवार से संपर्क करके ही उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है। इस संस्था में इस्लाम को अपनाने वालों में 60% महिलाएं हैं। लगभग 70% लोग हिंदू धर्म से इस्लाम कबूल करते हैं और धर्म परिवर्तन करने वाले अधिकतर गरीब बैकग्राउंड से आते हैं। धर्म परिवर्तन पर हिंदू संस्थाएं चिंतित हैं, लेकिन अली कोया कहते हैं कि मुसलमान भी आर्य समाज और ईसाई मजहब कबूल कर रहे हैं। धर्म परिवर्तन पर चिंता के बावजूद केरल में दूसरे राज्यों के मुकाबले सांप्रदायिक सद्भावना का माहौल अधिक मजबूत है। यहाँ हिंदू आबादी 50% से अधिक है, जबकि मुस्लिम आबादी 26% और इससे कुछ कम संख्या ईसाई धर्म को मानने वालों की है। जुबैर अहमद, BBC कालीकट।
और अब सुनेंगे खेल की खबरें।
खेल की दुनिया की खबरों के साथ मैं हूं सुमिरन प्रीत कौर। क्रिकेट की फिलहाल जो सबसे बड़ी खबर है वो है ये कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग ठाकुर को भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के पद से हटा दिया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग ठाकुर को अवमानना का नोटिस भी दिया है। अब इसके आगे क्या, बता रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार विजय लोकपल्ली।
अब नेक्स्ट तो ये है कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा। अनुराग ठाकुर और अजय शिर्के को तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि आप कोई ऑफिस नहीं रख सकते हैं। नया प्रेसिडेंट जो है, ये तो ऐसी स्थिति कभी पहले आई नहीं। एक बार आई थी जब बस थोड़ी देर के लिए सुनील गावस्कर बने थे, फिर शिवलाल यादव को एक इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया था। पर यह स्थिति बहुत, मैं कहूंगा, गंभीर, क्योंकि जिन हालात में ये हटाए गए हैं ये कभी सोचा नहीं था इन्होंने शायद। पर नए प्रेसिडेंट BCCI के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो सीनियर मोस्ट वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, अब सीनियर मोस्ट जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो भी एक ऐसे एसोसिएशन से हैं जिन्होंने लोधा जी के जो रिकमेंडेशन थी पैनल की उन्होंने मानी नहीं है, तो क्या वो क्वालिफाई करते हैं? यहाँ तक खिलाड़ियों का सवाल है, वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं फील्ड पे, वो एक सेविंग ग्रेस है मैं कह सकता हूँ। भारत देखिए, जो खिलाड़ी जब खेल के मैदान पे उतरते हैं तो अपनी पर्सनल या जो दूसरी जो उनकी प्रॉब्लम्स होती है वो बाहर छोड़ के आते हैं। जब मैदान में खिलाड़ी उतरते हैं तो उसके सामने सिर्फ प्रतिद्वंदी है और उसको अपना एक अपना चैलेंज है। और ये अगर आप देखें, भारत ने 4-0 से इंग्लैंड को हराया, 3-0 से न्यूजीलैंड को हराया और इतनी अच्छी टेस्ट टीम उभर के आई है विराट कोहली की कप्तानी में, तो क्रिकेट ऑन द फील्ड कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे नहीं लगता जरा सा भी फर्क पड़ेगा।
भारत और इंग्लैंड के बीच पहला अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच खेला जाएगा 15 जनवरी को पुणे में। वहीं आज ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच सिडनी में शुरू होगा तीसरा टेस्ट मैच। ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज में 2-0 से आगे है। खेल की दुनिया से फिलहाल इतना ही।
और कार्यक्रम के खात्मे से पहले एक बार फिर से सुनते हैं विश्व समाचार।
BBC समाचार। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में चल रही खींचतान के बीच आज मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव का खेमा चुनाव आयोग से मिलेगा। कल उनके पिता मुलायम सिंह यादव अपने करीबी अमर सिंह और जयप्रदा के साथ मिलकर पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर दावा जताने चुनाव आयोग पहुंचे थे। सीरिया के कई विद्रोही गुटों ने कहा है कि उन्होंने फिलहाल सीरियाई सेना के साथ प्रस्तावित शांति समझौते पर विचार करना छोड़ दिया है। विद्रोही गुटों का कहना है कि मौजूदा 4 दिनों का युद्ध विराम लागू होने के बावजूद राष्ट्रपति बशर अल असद की सेनाएं लगातार गोलीबारी कर रही हैं। ब्राजील के अमेजोनास राज्य में एक जेल में कैदियों के 2 गुटों के बीच हुए दंगे में 50 लोग मारे गए हैं। दंगों के बाद पुलिस जेल की जोर शोर से तलाशी ले रही है। भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने नेतन्याहू से पुलिस ने कई घंटों तक पूछताछ की। नेतन्याहू और उनकी पत्नी पर अमीर व्यापारियों से रिश्वत लेने और सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग का आरोप है। बीबीसी समाचार।
स्टूडियो मैनेजर थे शाकिर आलम। हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कीजिए। रेडियो पर अगला कार्यक्रम शाम के 7:30 बजे, तब तक नज़र बनाए रखिए bbchindi.com पर। नमस्कार।